नेशनल एडवोकेसी ग्रुप फेडरल सरकार से सांस्कृतिक रूप से विविध पृष्ठभूमि वाले ऑस्ट्रेलियाइयों को सिस्टमिक बाधाओं को पार करने की मदद की गुहार लगा रहे हैं। मंगलवार को सीनेट कमेटी के समक्ष इन एडवोकेसी ग्रुप्स ने डायस्पोरा समुदायों के सामने आ रही चुनौतियों का ब्यौरा पेश किया। सीनेट इंक्वायरी में सांस्कृतिक संगठनों को मिलने वाली सरकारी ग्रांट्स या फंडिंग के संबंध में भी चर्चा हुई। इसके अलावा कमजोर समूहों में सुरक्षा की चिंता और प्रशासनिक सहयोग को बेहतर बनाने के उपाय खोजे जाने की जरूरत पर भी बल दिया गया। कमेटी को बताया गया कि डायस्पोरा समुदायों के पास अपनी आवश्यकता के अनुसार बेहद सीमित संसाधनों के कारण भी सरकार और प्रशासनिक सहयोग में बाधा आती है। डायस्पोरा एक्शन ऑस्ट्रेलिया की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेनिस गोल्डफिंच ने इंक्वायरी से कहा कि बेहतर सहयोग के लिए इन समुदायों में भरोसा जगाने की आवश्यकता है।
Diaspora are valuable knowledge holders of the social, political and economic dynamics of their home country. They are both willing and well placed to transfer this knowledge to relevant ministers, diplomats and DFAT personnel. The Australian government would benefit from establishing a diaspora liaison role within DFAT to oversee, coordinate and support departmental engagement with diaspora communities across its range of functions. Trust can only be built through meaningful engagement and an ongoing commitment to collaboration, as opposed to the current stop-start and highly transactional interactions with diaspora. Investing in these relationships and demonstrating a commitment to longer-term, mutually beneficial partnerships would provide significant benefits to government and enable development cooperation.
कमेटी को ये भी बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया में सांस्कृतिक रूप से विविध लोगों को रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, रोजगार क्षेत्र में तरक्की का अभाव सहने के कारण स्थिति गंभीर है। सुश्री गोल्डफिंच ने इन मुद्दों से निपटने के तरीके भी सुझाए।
The Australian government must first develop genuine and sustainable partnerships with diaspora community. To more effectively advance Australia's diaspora collaboration, government should first focus on investing in existing civil society partnerships. Secondly, investment should be directed to testing new diaspora collaboration models and directly resourcing diaspora communities through co-designed funding streams. Harnessing the unique value of diaspora is impossible to achieve without developing an enabling environment shaped by a comprehensive diaspora policy and tailored investment model. While policies for engagement with civil society and with refugee communities do exist across various federal government departments, there is a notable absence of diaspora policy.
Multicultural Youth Advocacy Network रिफ्यूजी और माइग्रेंट समुदायों के युवाओं के अधिकारों और समस्याओं से निपटने वाला प्रमुख संगठन है। इसकी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नेंडाइन लिडी ने कमेटी को चेतावनी दी कि भाषाई और सांस्कृतिक रूप से विविध समाज के युवा ऑस्ट्रेलिया में अनेक बाधाओं का सामना करते हैं।
The voices of this group of young people are commonly marginalized in policy development, in program design and delivery. Even though their voices are commonly marginalized, they're certainly not a minority group. They make up just under half, about 47% of Australia's youth population. So they're by no means a minority group in the Australian youth cohort landscape. But I will say they are an incredibly diverse population group due to a range of intersecting factors, including country of origin, migration journey and experience, language, cultural background, socioeconomic status, faith, age on arrival, geographic location. Many are living in regional and rural areas, as well as in metropolitan and capital cities.
कमेटी के समक्ष अनेक युवा कार्यकर्ताओं ने गवाही देते हुए बताया कि रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन का इन लोगों पर भयानक असर होता है। सुश्री लिडी ने व्यापक एंटी रेसिज्म रणनीति बनाने की मांग की। वे कहती हैं कि रेसिज्म का सामना करने वालों पर दूरगामी असर होते हैं।
We know from the work that we do with diaspora young people that they commonly experience barriers to their full participation as active citizens in Australia, and they include experiences of racism and discrimination, access and equity in the service system, so cultural language that can present as barriers to essential services and supports, or a lack of culturally responsive service delivery in mainstream systems. mental health and the impact of immigration policy.
साउथ सूडान से आए पूर्व रिफ्यूजी एपेजोक बियार ने कमेटी को बताया कि डायस्पोरा समुदायों की समस्याओं से निपटने के लिए बहुस्तरीय रणनीति बनाने की जरूरत है। सीनेट कमेटी के अध्यक्ष तस्मानिया के लिबरल सेनेटर एरिक एबेज हैं। उन्होंने सभी के द्वारा अंग्रेजी भाषा बोलने की आवश्यकता पर बल दिया।
From my observations, the importance of English language skills are vital because, regrettably, there is a degree of exploitation of new arrivals and diaspora communities, often by their own countrymen who rely on their fellow countrymen not having sufficient language skills, for example, to ring the Fair Work Ombudsman or understand what minimum wage and other conditions might be.
श्री एबेज ने चेतावनी भी दी कि अधिकारियों को उन समुदायों के सदस्यों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जैसी सत्ताओं के खिलाफ विचार प्रकट करते हैं। SBS के कई प्रतिनिधि भी कमेटी के समक्ष पेश हुए, जिनमें ऑडियो एंड लैंग्वेज कंटेंट की डायरेक्टर मैंडी विक्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स डायरेक्टर क्लेयर ओनील और एक्सटर्नल अफेयर्स मैनेजर नाटाशा ईव्स शामिल हैं। सीनेट कमेटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट 26 नवंबर को पेश करेगी।